नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बढ़कर 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 6.5% था। जीडीपी के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वृद्धि एनडीए सरकार के निरंतर निवेश प्रोत्साहन और मांग आधारित नीतिगत उपायों के कारण संभव हो रही है। आर्थिक विशेषज्ञ दीप शिखा सिकरवार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि जीडीपी में ये रुझान विभिन्न क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है।
जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, ये एडवांस एस्टिमेट्स जो हैं 7.4%, ये दिखा रहा है कि जो मोमेंटम है अर्थव्यवस्था में भारत की, इतने सारे जो वैश्विक चुनौतियां रही हैं अर्थव्यवस्था के सामने और अभी भी हैं, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें गति बनी हुई है। सर्विस क्षेत्र जो है उसका परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन का परफॉर्मेंस जो है, दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है।
विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 कार्यक्रम कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। खेल और युवा कार्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करने, चुनौतियों का सामना करने और देश के भविष्य के निर्माण की रूपरेखा में योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के युवा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करेंगे। 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज से शुरू हो रहा है। ये पर्व ईस्वी सन 1026 में जनवरी में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए हमले की 1000वीं वर्षगांठ और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। इस आयोजन में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां होंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अमरावती को प्रदेश की राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक संसद में पेश करने का आग्रह किया है। ये अनुरोध पिछली रात नई दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान किया गया। केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में घरों की गिनती की जाएगी। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। जनगणना के लिए 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका के विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जारी दस्तावेजों से ये बात उजागर हुई है। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी राजनयिकों और रक्षा अधिकारियों ने कई अमरीकी अधिकारियों, मध्यस्थों और अमरीका की मीडिया से 50 से अधिक बार संपर्क किया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में शामिल है। उन्होंने कहा कि बहुध्रुवीय विश्व के लिए प्रतिबद्ध दो देशों के तौर पर इस समय वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जियान नोएल बैरोट के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि लगातार बातचीत संबंधों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीलंका की यात्रा के पहले दिन उच्च स्तरीय वार्ता की। उन्होंने श्रीलंका के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से बातचीत की। इस दौरान आपसी रक्षा सहयोग के बारे में चर्चा हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा, पेशेवर सैन्य आदान प्रदान और श्रीलंका सेना को ठोस समर्थन देने पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के पुत्र अग्निवेश अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके परिवार को शक्ति और साहस प्रदान करने की प्रार्थना की। मौसम विभाग ने राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में आज से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।